नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जोएल मोकिर की द एनलाइटेंड इकोनॉमी ब्रिटेन के 1700 से 1850 तक के आर्थिक इतिहास और औद्योगिक क्रांति की व्याख्या करने वाली व्यापक आर्थिक ऐतिहासिक कृति है। इसका केंद्रीय प्रश्न है कि ब्रिटेन में तकनीकी परिवर्तन अस्थायी उछाल न रहकर निरंतर आधुनिक आर्थिक वृद्धि का आधार कैसे बना। मोकिर केवल कोयले, व्यापार, पूंजी, साम्राज्य या संस्थाओं जैसे भौतिक कारणों पर निर्भर व्याख्याओं को पर्याप्त नहीं मानते। वे ज्ञान, विचारों, प्रयोग और सुधार की उस संस्कृति को निर्णायक मानते हैं जिसे वे औद्योगिक एनलाइटनमेंट कहते हैं। पुस्तक दिखाती है कि वैज्ञानिक जिज्ञासा, कुशल कारीगरी, प्रकाशन, संस्थाओं और उद्यम के बीच संबंधों ने आविष्कारों को उपयोगी तकनीक में बदला। यह कथा औद्योगिक क्रांति को केवल कपड़ा मिलों और भाप इंजनों की घटना नहीं बल्कि ज्ञान के उत्पादन, प्रसार और अनुप्रयोग की सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखती है। विस्तृत शोध और आर्थिक तर्क के साथ लिखी गई यह पुस्तक ब्रिटेन की असाधारण औद्योगिक छलांग के कारणों, सीमाओं और दीर्घकालिक परिणामों का विश्लेषण करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले औद्योगिक एनलाइटनमेंट, प्रगति में विश्वास और उपयोगी ज्ञान का ढांचा। मोकिर का सबसे विशिष्ट विचार औद्योगिक एनलाइटनमेंट है। इसका अर्थ केवल यूरोप के प्रबोधन काल के दार्शनिकों का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। यह ऐसी व्यापक मानसिकता है जिसमें लोग मानते हैं कि प्रकृति का व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग और तर्क मनुष्य की भौतिक दशा सुधार सकते हैं। इस दृष्टि में ज्ञान सम्माननीय भी है और उपयोगी भी। इसलिए तकनीकी समस्या को परंपरा से मिली सीमा नहीं, जांच और सुधार का विषय माना जाता है। मोकिर के लिए यही बदलाव औद्योगिक क्रांति को पहले की अनेक तकनीकी उपलब्धियों से अलग करता है। कुछ आविष्कार किसी भी समाज में हो सकते हैं, लेकिन निरंतर नवोन्मेष के लिए प्रगति की संभावना पर सामाजिक भरोसा चाहिए। ब्रिटेन में वैज्ञानिक चर्चा, सुधारवादी विचार और व्यावहारिक यांत्रिक रुचि ने ऐसा वातावरण बनाया जिसमें नई विधियों को अपनाना वैध और लाभकारी दिखा। यह तर्क भौतिक संसाधनों के महत्व को नकारता नहीं है, बल्कि यह पूछता है कि समान संसाधन रखने वाले समाजों में से कुछ ही उन्हें लगातार बेहतर तकनीक के साथ क्यों जोड़ पाए। पुस्तक का उत्तर है कि विचार आर्थिक हितों की केवल छाया नहीं होते, वे यह तय करते हैं कि लोग किन समस्याओं को हल करने योग्य समझेंगे, प्रमाण किसे मानेंगे और नवीनता को जोखिम या अवसर के रूप में कैसे देखेंगे। दूसरा, प्रस्तावनात्मक और निर्देशात्मक ज्ञान के मिलन से तकनीक का विस्तार। पुस्तक ज्ञान के दो परस्पर पूरक रूपों के बीच संबंध पर विशेष बल देती है। एक है प्रस्तावनात्मक ज्ञान, अर्थात प्रकृति कैसे काम करती है इसके बारे में सिद्धांत, अवलोकन और व्याख्या। दूसरा है निर्देशात्मक ज्ञान, अर्थात कोई वस्तु या प्रक्रिया वास्तव में कैसे बनाई, चलाई या सुधारी जाए। पहला ज्ञान विद्वानों और वैज्ञानिकों के पास अधिक हो सकता है, जबकि दूसरा कारीगरों, इंजीनियरों और कार्यशाला के अनुभवी लोगों के पास होता है। मोकिर का तर्क है कि औद्योगिक प्रगति तब तेज होती है जब हाथ और दिमाग की ये दुनियाएं संवाद कर सकें। केवल वैज्ञानिक सिद्धांत से मशीन नहीं बनती, क्योंकि उसके लिए सामग्री, माप, औजार और निर्माण कौशल चाहिए। केवल अनुभवजन्य कारीगरी भी सीमित रह सकती है यदि उसके पीछे के कारणों को समझकर उसे व्यवस्थित रूप से सुधारा न जाए। तापमान और वायुदाब मापने वाले उपकरणों जैसी प्रगतियों में सिद्धांत और शिल्प की ऐसी साझेदारी दिखाई देती है। यह ढांचा आविष्कार को किसी अकेले प्रतिभाशाली व्यक्ति की अचानक उपलब्धि मानने के बजाय सामूहिक ज्ञान व्यवस्था का परिणाम बनाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि तकनीकी परिवर्तन के लिए शिक्षित विशेषज्ञों के साथ गहरे व्यावहारिक कौशल वाले श्रमिक और निर्माता भी आवश्यक थे। ब्रिटेन की बढ़त का एक कारण इस ज्ञान संपर्क को संभव बनाने वाले सामाजिक और पेशेवर नेटवर्क थे। तीसरा, प्रकाशन, विद्वत संस्थाएं और खुले संवाद से ज्ञान का संचय। मोकिर के विश्लेषण में ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रसार, आलोचना और संचय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी के ब्रिटेन में वैज्ञानिक और साहित्यिक समाजों, पत्राचार, पुस्तिकाओं, तकनीकी लेखन और सार्वजनिक चर्चाओं ने विचारों को स्थानीय कार्यशालाओं या बंद समूहों तक सीमित नहीं रहने दिया। इस व्यवस्था ने उपयोगी जानकारी को अधिक लोगों तक पहुंचाया और नए दावों को जांचे जाने योग्य बनाया। जब अलग अलग क्षेत्रों के लोग उपकरणों, विधियों और प्राकृतिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं, तब एक व्यक्ति की समस्या दूसरे के प्रयोग का आधार बन सकती है। ऐसी संचार संरचना ज्ञान को संचयी बनाती है, क्योंकि बाद के सुधारकों को हर बार शून्य से शुरू नहीं करना पड़ता। मोकिर इसीलिए ब्रिटेन की प्रकाशन संस्कृति और ज्ञान साझा करने की प्रवृत्ति को आर्थिक इतिहास का केंद्रीय तत्व मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर प्रकाशित विचार तुरंत उद्योग में उतर गया। ज्ञान और व्यावसायिक उपयोग के बीच समय, लागत और कौशल की बाधाएं थीं। फिर भी विचारों की उपलब्धता ने प्रयोग की सीमा बढ़ाई और तकनीकी समुदायों को अधिक जुड़ा हुआ बनाया। पुस्तक का व्यापक निहितार्थ यह है कि नवाचार की क्षमता केवल प्रयोगशालाओं की संख्या से नहीं मापी जा सकती, उसे उन संस्थाओं से भी समझना होगा जो विश्वसनीय सूचना को फैलाती हैं, असहमति को जगह देती हैं और उपयोगी खोजों को व्यावहारिक समस्याओं से जोड़ती हैं। चौथा, औद्योगिक क्रांति एक संक्षिप्त विस्फोट नहीं बल्कि दीर्घकालिक परिवर्तन। मोकिर औद्योगिक क्रांति को सामान्यतः 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के आरंभ से जोड़ी जाने वाली तीव्र तकनीकी हलचलों तक सीमित नहीं करते। उनकी पुस्तक 1700 से 1850 तक की अवधि को लेकर पूछती है कि परिवर्तन की पूर्व शर्तें कैसे बनी और उसके प्रभावों को व्यापक होने में समय क्यों लगा। उनके अनुसार औद्योगिक क्रांति की सबसे उपयोगी परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसमें तकनीक आर्थिक परिवर्तन का मुख्य इंजन बन गई। यह परिभाषा किसी एक मशीन, उद्योग या तारीख के बजाय परिवर्तन की दिशा पर ध्यान देती है। कपड़ा उद्योग, ऊर्जा, धातुकर्म और परिवहन में उन्नति निस्संदेह महत्वपूर्ण थी, लेकिन असली विशिष्टता तकनीकी सुधार की पुनरावृत्ति में थी। नई तकनीकें उत्पादन, लागत, संगठन और बाजारों को बदलती हैं और बदली हुई परिस्थितियां आगे के सुधारों की मांग पैदा करती हैं। इसलिए तत्काल उत्पादन वृद्धि और दीर्घकालिक जीवन स्तर सुधार के बीच अंतराल हो सकता है। यह दृष्टि उन सरलीकृत कथाओं को चुनौती देती है जिनमें औद्योगिक क्रांति एकदम अचानक घटित हो जाती है। साथ ही यह चेतावनी देती है कि ब्रिटेन की सफलता को किसी एक कारण से नहीं समझा जा सकता। कानूनी स्थिरता, संपत्ति अधिकार, व्यापारिक अवसर, कौशल और ऊर्जा जैसे कारक मौजूद थे, पर मोकिर की विशेष रुचि यह समझने में है कि ये परिस्थितियां ज्ञान संचालित तकनीकी प्रगति के साथ कैसे जुड़ी। अंत में कारखाना प्रबंधन और लेखांकन, औद्योगिक क्षमता की अनदेखी तकनीक, मोकिर की आर्थिक इतिहास दृष्टि मशीनों तक सीमित नहीं रहती। बड़े औद्योगिक उद्यमों को चलाने के लिए सूचना और नियंत्रण की तकनीकों की भी जरूरत थी। कारखानों में भारी स्थिर पूंजी, उपकरणों का क्षय, कच्चे माल का भंडार, अलग अलग विभागों की लागत और बिक्री आय जैसी समस्याएं उभरती थीं। छोटे पारिवारिक कारोबार की सहज निगरानी इन जटिलताओं के लिए पर्याप्त नहीं थी। बेहतर लेखांकन और बहीखाता ने निवेशकों तथा प्रबंधकों को यह समझने में मदद दी कि कारोबार वास्तव में लाभ कमा रहा है या हानि, पूंजी कहां फंसी है और किस प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है। इस अर्थ में लेखांकन केवल बीते लेन देन का रिकॉर्ड नहीं, निर्णय लेने की आधारभूत तकनीक है। मानकीकृत वित्तीय सूचना ने साझेदारों और दूर बैठे निवेशकों के बीच भरोसा बनाने में भी भूमिका निभाई, विशेषकर जब उद्यम का आकार बढ़ा और स्वामित्व तथा दैनिक प्रबंधन अलग होने लगे। यह विषय पुस्तक की बड़ी थीम को व्यावहारिक धरातल देता है। औद्योगिक प्रगति के लिए केवल आविष्कारक का कौशल पर्याप्त नहीं होता, उस आविष्कार को पूंजी, श्रम, सामग्री और बाजार के साथ विश्वसनीय ढंग से संगठित करना पड़ता है। मोकिर का व्यापक संकेत है कि आर्थिक विकास में अक्सर वे साधन निर्णायक होते हैं जिन्हें हम साधारण प्रशासनिक व्यवस्था समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सूचना की गुणवत्ता स्वयं उत्पादक क्षमता और नवाचार की सीमा को प्रभावित करती है। निष्कर्ष में द एनलाइटेंड इकोनॉमी उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो औद्योगिक क्रांति को केवल मशीनों, कोयले या साम्राज्य के इतिहास से आगे समझना चाहते हैं। आर्थिक इतिहास के विद्यार्थी, इतिहासकार, नीति और नवाचार में रुचि रखने वाले पाठक तथा विज्ञान और उद्योग के संबंध पर विचार करने वाले लोग इससे गहरी बौद्धिक सामग्री पाएंगे। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह नवाचार को किसी रहस्यमय प्रतिभा या एकल तकनीकी सफलता का परिणाम मानने से रोकती है। यह दिखाती है कि ज्ञान का प्रसार, आलोचनात्मक संवाद, कुशल कारीगरी, प्रबंधन और भरोसेमंद सूचना व्यवस्था मिलकर ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनमें सुधार दोहराए जा सकते हैं। तकनीक और विचार जगत को अलग अलग अध्यायों की सूची की तरह नहीं रखते, बल्कि उन्हें निरंतर तकनीकी प्रगति की समस्या से जोड़ते हैं। उनका औद्योगिक एनलाइटनमेंट का विचार बहस योग्य है, खासकर कारण और वर्णन के बीच की सीमा को लेकर, पर यही इसे उपयोगी बनाता है। यह पुस्तक आसान एक कारणी उत्तर देने के बजाय बताती है कि समृद्धि की स्थायी प्रक्रिया ज्ञान को सामाजिक रूप से संगठित करने से पैदा होती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जोएल मोकिर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।